स्वाध्याय बलि महाराज से बामन द्वारा दान की याचना, तो यही क्रम आप आगे अब दान देंगे, तो इसका पूरे अध्याय का संक्षिप्त विवरण जो है वो भी जैसे होता है, जैसे प्रभुपाद ने फोर्थ कैंटो ऑनवर्ड्स जो है चौथे स्तर के बाद से जो है विवरण मिलना शुरू होता है, उससे पहले के भगवत संक्षिप्त विवरण नहीं दिया है। तो इसका ये कह रहे कि इसका सारांश ये है, सूर्य अध्याय का 20वां अध्याय का सारांश ये इस प्रकार है, यज्ञान होते हुए भी कि वामन देव उन्हें ठग रहे हैं, बलि महाराज ने दान में अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। वामन ने अपने शरीर को विस्तृत करके भगवान विष्णु जैसा विराट रूप धारण कर लिया। तो ये बेसिकली पूरा सारांश है इस अध्याय का। श्री शुका उवाच बलिदेवं गृहपते उदाचार्येन भाषत तुष्णीं भूत्वाशनं राजन् उवाचा वहितो गुरुम्। शोका उवाच बलिदेवं गृहपतिः कुलाचारेण भाषितः तस्मिन् भूत्वाक्षणं राजन् उवाच वहितो गुरुम्। श्रीशोक उवाच बलिदेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः तस्मिन् भूत्वाशनं राजन् वाचा वहितो गुरुम्। महाराज बलि ने एवं इस प्रकार गृहपति गृहस्थी के स्वामी यद्यपि पुरोहित द्वारा मार्गदर्श कुलाचार्येन पारिवारिक गुरु के द्वारा भाषित संबोधित किया गया मौन भूत्वा होकर क्षण एक क्षण के लिए राजन हे राजा महाराज परीक्षित उवाच कहा आवहित पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद गुरु अपने गुरु से श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस दुर अभिसंधि में मौन रहे, वे अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे। बलि महाराज जैसे गंभीर व्यक्ति को आकर कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करे जैसा उन्होंने परामर्श दिया था, किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य अब उनके गुरु नहीं रहे क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य को भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो वह गुरु नहीं रह सकता। गुरु न शिष्या भागवतम 5वां स्कंध 5वां अध्याय श्लोक संख्या 18। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मा वैति सोऽजन्म। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाए। अतः ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि मैं अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दें या फिर वे स्वतंत्र होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करें। इसमें उन्हें कुछ समय लगा। इसीलिए कहा गया है तो श्री मत्वा शनम राजान वाच विगतो गुरु। इस समय इस विषय में तर्क वितर्क करके उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों ना करनी पड़े। जिसे गुरु माना जाए किंतु जो विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध जाता हो उसे गुरु नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार किया हो तो उसे त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार हुआ है महाभारत उद्योग पर 171 और 80 गुरु अवमृतस्य कार्यकार्यम जानतः उत्पथा प्रतिप्रणस्य परित्यागो विधीयते। शिवजी गोस्वामी ने सलाह दी कि इस प्रकार के व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु गुरु वैष्णव स्वपचो गुरु। एक विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पटु होते हुए भी गुरु होने के योग्य नहीं है यदि वह वैष्णव नहीं है, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। पद्म पुराण तात्पर्य था यही समाप्त और तात्पर्य बड़ा तात्पर्य था बस सिर्फ दो पैराग्राफों यानी दो मुख्य विषय पे जो है प्रभुपाद यहाँ पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं जो मेरी समझ से जो मुझे समझ आए। तो मानव एक उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य जो कि जब भी प्रिंसिपली मतलब गुरु तत्व पर कभी भी जब विचार विमर्श होता है किया जाना चाहिए तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये तात्पर्य है। और इसमें गुरु तत्व से ज़्यादा मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि शिष्य किस तरीके का होना चाहिए यानी कि शिष्य की जिम्मेदारी कितनी है और शिष्य के ऊपर क्या यानी मैं कहूँगा कि शिष्य की योग्यताओं में से एक चीज़ जो मुझे इससे निकल के आई तो मैं उसी के बाद जो जैसे मैं पिछले अध्याय से चलते हैं और पिछले अध्याय के श्लोक से क्या 3 से लेकर लास्ट तक पूरे अध्याय तक शुक्राचार्य ने बड़े सारे जो है तर्क दिए आर्गूमेंट्स दिए कई सारे जो है उन्हें युक्तियाँ दी और उस युक्तियों के वजह से जो है अभी बलि महाराज थोड़े खामोश हैं। अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कंटेम्पलेटिव यानी कि विचार विमर्श कर रहे हैं उनकी जो मौन जो है उनका वो सोचने के लिए यानी कि एक ये अक्सर जो है जिस चीज़ का को हाईलाइट किया जाता है अक्सर कि गुरु की आज्ञा हो तो झपट जाओ बिल्कुल कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर एक ऐसा विषय है जिसके वजह से जो है इसका एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो कि बेसिकली हारमोनी है यहाँ पर देखने को मिलता है कि और इसमें इस श्लोक के और इस पूरे प्रसंग में बलि महाराज की जो विजडम है, बुद्धिमत्ता, दानिशमंदी इस वक्त में, तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर निकल के आता है। पीछे के जो श्लोक हैं, जो जिसके अंदर जो है शुक्राचार्य ने कई युक्तियाँ दी हैं कि क्यों उनको बलि जो उनकी अपने वचन से मुकर जाना चाहिए, तो एक बात जो मुझे वहाँ पर ज़रूरी लगती है कि कई बार शायद ये निकल के आता है कि वो जो युक्तियाँ थी वो युक्तियाँ गलत थी। माफ कीजिएगा, युक्तियाँ गलत नहीं थी, क्योंकि अगर युक्तियाँ गलत होती तो वो कोट नहीं करते। तो वहाँ पर एक जगह पर उन्होंने बावरी चश्रुति जो कि ऋग्वेद का पार्ट है कोट किया डायरेक्ट। तो युक्तियाँ गलत नहीं थी, युक्तियों का इस्तेमाल गलत था, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूजिंग अ गुड लॉजिक फॉर अ बैड आर्गूमेंट, कि जब हम तर्कों का और युक्तियों का शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो है कुछ निचोड़ने के लिए अपने मतलब के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिसपे खासतौर पर लीडर्स और प्रीचर्स जो प्रचारक हैं और जो थोड़े यानी कि नए लोगों के लिए तो ये इतना लागू नहीं होता, पर मैं यहाँ पर जो ऑडियंस यहाँ पर देख रहा हूँ उसमें एक आध लोग छोड़ के जो है मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज में देख रहा हूँ कि लोग रिलेटिवली ध्यान दें, तो उनके लिए ये नहायत ही मैं समझता हूँ ज़रूरी है इस बात को समझना, जिसको अंग्रेजी में एकेडमिक इंटीग्रिटी कहते हैं। इंटीग्रिटी यानी कि अपने साथ ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब होता है दूसरे के साथ ईमानदारी, इंटीग्रिटी यानी अपने साथ ईमानदारी, अपने साथ झूठ न बोलो। तो शास्त्र को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है देखा जाए तो एक स्टेटमेंट को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बेजान चीज है जिसके अंदर प्रचारक जान डालता है, वही उसको जान डालता है या उसको बेजान बनाते हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो शास्त्र तो किसी प्रचारक से पहले से है, और वो कब हरकत में आती है जब कोई प्रचारक उसको हरकत में लाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो है उस प्रचारक की या खासकर लीडर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो शास्त्र की सेवा करें, ना कि शास्त्र से अपनी सेवा करवाए। शास्त्र की सेवा करने का मतलब है कि यानी खासतौर पर अगर हम प्रभुपाद के संदर्भ में, इस्मा के संदर्भ में देखें तो प्रचारक का कर्तव्य जो मुझे समझ आता है इज टू प्रेजेंट द पर्पस ऑफ प्रभुपाद इन द लैंग्वेज ऑफ आवर टाइम्स, यानी कि प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उनको जो है अपने अपने जो अभी जो अपनी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से, जो लोग हैं उसके हिसाब से उस जबान में उसको समझाया जाए जिस जबान में समझते हैं उसको। और इसका एक उल्टा हो सकता और इसका उल्टा हो सकता है कि जब हम शास्त्रों को अपनी सेवा में लगा, बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत पता भी चलता अगर इस पर जो है नजर ना रहे, जैसे कि अपनी कोई बात, यानी ये काम ऐसे शुरू होता है जब आप एक नतीजे पर पहुंच चुके होते हैं, अब उस नतीजे को मनवाने के लिए आप अलग अलग सहारे ढूंढ रहे होते हैं, उसके बाद ये जो है कारनामा जो है वो सरंजाम दिया जाता है, किस तरीके से कौन सी बात, पूरी बात नहीं बतानी, आधी बात बतानी है, इधर से बतानी है, चार चीज़ों को जोड़ के आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे जो है ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है, वो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी वजह है जो हम देखते हैं कि इस आधुनिक काल में शास्त्रिक अथॉरिटी इज लूजिंग ग्राउंड। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा वजह, यही इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये प्रचारक ही हैं जिनकी बदौलत जो है आज शास्त्र लोग नहीं मानते, क्योंकि जब उसका दुरुपयोग होता है तो फिर उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन इसी तरीके से शास्त्र अथॉरिटी स्टार्ट्स लूजिंग ग्राउंड, शास्त्र जो है वो जो है लोग फिर उसको खारिज करने नकारने लगते हैं, क्योंकि इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात जो इसमें मुझे समझ आई, जिसके अंदर तो ये चीज में एक बहुत एक और इसी विषय पे मुझे एक और बात जो मुझे समझ आती है कि लीडर्स के लिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि क्योंकि जब एक्सपीरियंस टीचर जब वो हो जाता है तो उसको एक पता होता है कि कौन सी बात बोलेगा जिस पर तालियां पड़ेंगी, कौन सी बात बोलेगा जिस पर गालियां पड़ेंगी, कौन सी स्टेटमेंट बोलनी है जिससे ये चार आदमी उठ के चले जाएंगे वहां से, कौन सी चीजें हैं कि जो ये जो है जो उसके नजरों में बदतमीज है उसकी बात नहीं सुन रहा, उसको बात जबरन बनवाया जा सकता है। तो ये चीजें उस वक्त इस टेम्पटेशन को, उस वक्त इस लालच को रोकना, ये संयम जो है प्रीचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्ती तालियां ये प्रीचर का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि किस तरीके से जो है बात को एक बहुत ही सतही तौर पर प्रेजेंट कर देना जिसकी वजह से जो है हाँ ठीक है वो बात ताली बट इफेक्ट। लीडर का काम ये नहीं, लीडर का काम पॉपुलर बात करना ही नहीं, लीडर का काम है जो बात ठीक है वो करना, और जो जनरली इसलिए उसकी 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 जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर जो ऑडियंस होती है वो मासूम भी होती है और गंवार भी होती है, दोनों चीजें होती है, मासूम भी होती है और गंवार भी होती है, तो इसीलिए उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे कि एक बच्चा होता है वो मासूम भी होता है और चीजों से अनजान भी होता है, तो वो एक बाप की तरह एक माँ की तरह उसको उसको जो है उसको गुमराह नहीं किया जाता, उसको सही रास्ते पर डालने के लिए सही बात करना, तो दैट इज वहां पर आप शास्त्र का जो उपयोग है वो कारगर और सही माना जा सकता है। अब इसके अंदर जैसे अगर आप इसका पूरा जो अभी आगे अध्याय चलेगा जहाँ पर पापा ने जो छोटा सा इसका जो विवरण जो दिया है शुरू में, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज हम पढ़ता हूँ यहाँ पर है, ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना कभी उचित नहीं होता क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कार्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि झूठ बोलने के पापपूर्ण फलों से भयभीत रहे क्योंकि पृथ्वी माता पापमय झूठ बोलने वालों का भार सहन नहीं कर सकती। सो ये जो ये बलि महाराज जो खामोश है उसकी एक वजह ये थी कि वो इस बारे में सोच रहे थे कि मैं झूठ बोलूं ना बोलूं, तो इसीलिए हम जो हम देखते हैं शास्त्रों के में धर्म के जो चार स्तंभ उसमें से एक स्तंभ जो है वो सच्चाई दी गई है। तो ये यहाँ पर कंसिडर करना कि सच बोलना और सच बोलने के एवज में अगर कोई उसका मुझे कोई खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, कोई नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसको आप कहते हैं कि ये कोई बलि महाराज का ये जो वो था खामोशी थी या उसके बाद जो उन्होंने किया वो इससे उसमें उसके अंदर ये एलिमेंट मौजूद नहीं था जिसको हम एरोगेंस कहते हैं कि जी मैंने बोल दी बात, जो अक्सर हम देखते हैं जो कम अकल के लोग होते हैं जिनकी अकल बहुत कम होती है या काम करती है तो वो कुछ इसी तरीके के होते हैं, मैंने बोल दिया ना एक बार बोल दिया हम ये हमारा उसूल है, ये आपका उसूल नहीं है, ये आपका घमंड है, उसके पीछे जो है उसूल ही है, उसूल कोई भी उसूल के पीछे एक मूल्य होता है, अगर वो उसूल जो है वो किसी मूल्य को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो उसको उसूल नहीं बल्कि हठधर्मी कहना चाहिए। सो यहाँ पर जो ये बलि महाराज का जो डिसीशन था इतना बड़ा डिसीशन कि उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी उसको नजरअंदाज करते हुए आगे चले, और ऐसा शास्त्र में कम से कम भागवत में भी जो है आप और भी ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जो इस तरीके के, जैसे 12वें स्कंद में आपको प्रसिद्ध वो वैशंपायन मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि का जो है क्लैश जो देखने को मिलता है जिसके अंदर भी सेम वो वैशंपायन मुनि जिस तरीके से उनको बोलते हैं, एक पूरी हिस्ट्री है उसके पीछे की क्यों इस तरीके से होता है, मगर जो बात वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर टेस्ट क्या है इसका अल्टीमेटली का कैसे पता चला, ये आप कोई ये पूछ सकता है कि जब ऐसा हो रहा था ये इंसिडेंस अभी जैसे ये अनफोल्ड हो रहा है इस वक्त, जैसे ये अभी हो रहा था कि बलि महाराज जो शुक्राचार्य की बात को नकार रहे हैं, तो उस वक्त देखने वाला आदमी जो है वो कैसे समझेगा कि ये अभी जो हो रहा ठीक हो रहा नहीं हो रहा, तो आगे इसका नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सच बात है कुछ चीजों में जो है आपको इंतजार करने की जरूरत है, मगर एक चीज देखने की जरूरत है उसके अंदर, और जब उसका 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 वो मतलब कैसे पता चला कि वो ठीक था कि गलत था कि उसको भगवान की बैकिंग मिली कि नहीं मिली? गुरु आफ्टर ऑल रिप्रेजेंटेटिव किसका है? भगवान का। वो गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का ठेकेदार नहीं। कई बार ये सिख के बारे में भी जो है समझ या कम होती है या इस बारे में बात नहीं होती अक्सर, क्योंकि ये सो कॉल थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल समझी जाती है, नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल पर समझी जाती है, बात करनी चाहिए इस बारे में कि गुरु का जो है गुरु कहाँ का काम जो है। यहाँ पर जब गुरु शब्द इस्तेमाल हो रहा है वैसे भी शिक्षा और दीक्षा दोनों गुरु के लिए, जब यहाँ पर त्याग की बात हो रही है शिक्षा और दीक्षा दोनों गुरु के त्याग की बात हो रही है, दोनों पहला गुरु होता है क्योंकि जिम्मेदारी दोनों ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज जरूरी है देखना या और जो देखने को आपको आगे मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वो पारदर्शी माध्यम है, वो इधर की बात जो है वो लाके इधर दे देते हैं, उसका इतना काम है बस। उसके एवज में जो है गुरु के अपनी शर्तें नहीं होती है कि जी क्योंकि मैं लेके आया हूं लिहाजा मेरा ये मुआवजा बनता है, तो फिर वो वहां पर दलाली शुरू हो गई। तो यहां पर जो है सटल चीज जो एक है, क्योंकि इसकी एक बैकग्राउंड है, बलि महाराज ने एवं ही शुक्राचार्य को गुरु नहीं बनाया, शुक्राचार्य जान बचाई थी बलि महाराज की, ये वाज डेड जो उसके दो तीन चैप्टर पहले, और साबित किया काबिल गुरु के साथ साबित किया, देखा जो आज शुक्राचार्य बलि महाराज जो भी थे शुक्राचार्य की वजह से थे, इंद्र को जीतना पूरे स्वराज तीनों लोगों का राज जो है ये शुक्राचार्य की वजह से हुआ, और ये कोई तीसरा नहीं, ये बृहस्पति कंसीड कर रहे हैं इस बात को। एक और जगह जहाँ पर इंद्र के साथ जो डायलॉग होता है तो बृहस्पति कंसीड कि देखो वो इसलिए जीता तुम इसलिए हारे। तो वहां पर जो है या उसके बावजूद जब वो अगर गुरु की बात को मानने से इनकार करे तो उसके पीछे एक असूल और उसके पीछे एक मूल्य, और वो अगर आपके मूल्य ठीक है अगर वो, तो आप यकीन जान सकते हैं कि भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो यहां मिलेगा। वैशव कपायन और याज्ञवल्क्य के केस में भी सेम चीज हम देख पाते हैं। इनफैक्ट याज्ञवल्क्य को जो पूरा कृष्ण यजुर्वेद उन्होंने दिया जो कि उसके पास पहले नहीं था, पूरे दुनिया को अगर याज्ञवल्क्य की देन है कृष्ण यजुर्वेद जिसके अंदर हम ईशा उपनिषद पढ़ते हैं, तो उसकी हिस्ट्री इस तरीके से उन्होंने नकार दिया, गुरु ने उसको त्याग दिया, तो उसने भी गुरु को जो हाथ जोड़े उसकी विद्या वापस करी, सूर्य नारायण की उपासना करी, ऐसे इसी तरीके से एक और केस हम नाइन्थ कैंप में देखते हैं, प्रसिद्ध का केस आता है जिसके अंदर वो जो है गायों की रक्षा कर रहा था रात को और शेर ने हमला किया और अंधेरे में उसको समझ नहीं आया, उसने तलवार चलाई, शेर के कान कटे गाय की गर्दन कटी, और वशिष्ठ मुनि ने जो है उसको श्राप दिया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया दुर्मति वशिष्ठ मुनि के लिए कि ये इस तरीके से जो है ये लीनियंसी बरतनी चाहिए थी राधा की, इस तरीके से उसको श्राप दिया, एक्सीडेंट था और उसको श्राप दिया कि तुम जाओ नरक जाओगे, और ये इस तरीके बहुत बहुत हेवी से श्राप था। तो अब काइंड ऑफ पर उसको भी उस केस में भी हम देखते हैं जो गलत है वहां पर गुरु गलत थे, कश्यप जो है उन्होंने उस पर रिटेलिएट नहीं किया, वो चले गए उनको वहां से छोड़ के और तपस्या की, और बता रहे हैं आखिरी श्लोक में नाइन्थ कैंटो में आपको मिलेगा, इवेंट बैक टू गॉडहेड, इवेंट बैक टू गॉडहेड। ये कैसे मुमकिन हुआ? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है एक चीज जो मुझे समझ आती है कि किसी की ठेकेदारी नहीं है परंपरा के ऊपर, जो ठीक होगा वो चलेगा, जो ठीक नहीं होगा नहीं चलेगा, बात सच लग सकती बात सही है, किसी का किसी के ऊपर एडवांटेज नहीं है, यही भगवान की चक्का जस्टिस है। अगर गुरु ठीक है ठीक तरीके से लेके जा रहे हैं यही उसका गुण है, अगर वहां पर गुरु गलती करता है वहां पर डिसाइपल ठीक है डिसाइपल विल बी सेव्ड, और यही प्रिंसिपल है जिसके वजह से हम इस्कॉन के अंदर सेफ माने जाते हैं कि अगर आप गुरु परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी गुरु की गलती भी है गुरु का फॉल डाउन हो जाता है आप कहीं नहीं जाते, फॉल डाउन इंडिविजुअल होता है, फॉल डाउन कलेक्टिव नहीं होता, और ना ही फॉल डाउन हेरिडिटरी होता कि जी आपको विरासत में फॉल डाउन मिला है क्योंकि आपका गुरु फॉलन था उसके नीचे जितने लगे सारे लाइन पर लग गए, ठीक है ना? तो इसी तरीके से तो यानी कि फॉल डाउन की जिम्मेदारी पतन की जिम्मेदारी जात की जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। बिल्कुल उल्टा भी है कि अगर डिसाइपल फॉल्ट का फॉल डाउन हो रहा है तो उस वक्त गुरु का फॉल डाउन नहीं होता, दोनों तरफ से LHS इक्वल टू RHS दोनों साइड बराबर। तो इन चीजों को समझना और जरूरी, और जो भागवत में देखा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि ऐसा होता है, तो इसीलिए जज्बाती ना हो, आंख का खोल के चलो। ऐसा हो सकता है क्योंकि भौतिक दुनिया है और आप जाहिर बात है कि गोलक वृंदावन तो नहीं रह रहे, भौतिक जगत में रह रहे हैं, जिस तरीके की दुनिया है उसके अंदर इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, होते हैं, इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं और इसीलिए उसका काउंटर मेजर भी दिया गया कि उस वक्त क्या करना चाहिए। तो यही ट्रेनिंग है डिसाइपल की, कि वो उस वक्त जो है डिसाइपल की ट्रेनिंग टेस्ट होती है कि वो क्या सीखा है आज तक, क्योंकि उस वक्त देखा अगर जिसकी डिसाइपल की ट्रेनिंग ठीक नहीं होगी तो या तो उसी के पीछे चल देगा, जो कह रहे जितनी वो जज्बाती ठीक नहीं हम पीछे ठीक उस तरह से चल देगा, या कुछ और भी कई चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, कि डिसाइपल जो है वो कई केसेस में देखते हैं जज्बाती होते हैं, कमजोर होते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर ये और टेस्ट है। और अगर यहाँ पर देखेंगे कि बलि महाराज को अगर कोई किसी डिसाइपल के लिए इससे बड़ा टेस्ट जो भगवान ने लिया, उसका टेस्ट ये नहीं था कि उसको, मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा टेस्ट नहीं था उसके लिए कि उसको तीनों जो है स्वर्ण पाताल से जो है हाथ धोना पड़ेगा। मैं समझता हूँ उसका बड़ा टेस्ट ये था कि जिसने उसकी जान बचाई, जो उसका गुरु भी है, उसकी बात को टाप के जो है वो कैसे भगवान की बात मानेगा। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल जैसे भागवत में आता भी है कि बलि महाराज इसी वजह से बलि महाराज कृपा से माने जाते हैं कि वो प्रोसेस पे थे मगर उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, इस तरह का टेस्ट पास किया उन्होंने उस वजह से। सो तो ये अक्सर कई बार ये चीज लेके ऐसा सोचा जाता है कि अच्छा ऐसा, ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं आमतौर पर नहीं होते हैं मगर हो सकते हैं, तो तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए। कई बार जब लोग अक्सर देखा जाता है भक्तों में ये भी कमजोरी का सबूत होता है दरअसल कि जिन्हें क्या कहते हैं वो तो बलि महाराज थे, हम तो बलि महाराज नहीं है। तो वो तो कभी भी ये नहीं बोला गया कि आप बलि महाराज हैं, आपको इस गलतफहमी का सामना मैं क्यों है, वाकई में आप बलि महाराज नहीं है, पर आपको बलि महाराज के नक्शे कदम पर चलना है और बलि महाराज के नक्शे कदम पर चलकर आप कभी भी बलि महाराज नहीं बनेंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है ना, वो सहज ही है सर, या मैं कहूँगा मायावाद है सर कि हम किसी के नक्शे कदम पर चलते वैसे नहीं, वैसे बनेंगे वो नहीं बनेंगे। तो हम कभी बलि महाराज, कई बार होता ना कि कोई चीज प्रभुपाद वो तो प्रभुपाद कर सकते थे, तो बात वही है कि आप प्रभुपाद नहीं, इस बात बिल्कुल ठीक है, वो कभी भी नहीं बोला कि डे वन से नहीं बोला आप प्रभुपाद, हमने बोला कि जैसे प्रभुपाद ने किया उसको उसके रक्षा कदम पे चले जाता है, उसका पीछे का प्रिंसिपल क्या था और उसके पीछे कौन सा वैल्यू था, कौन सा मूल्य था। तो जहाँ पर यहाँ पर जैसे जिस तरीके से जो मूल्य देखा गया, और ये मूल्य जो है ये मूल्य भगवान को पसंद है, क्वालिटीज नहीं, तो भागवत गीता के 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 16वां अध्याय कई क्वालिटीज जहाँ पर भगवान बताते हैं जो हो और खासकर 12वां अध्याय में प्रियोसी में ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है। तो अक्सर कई बार जो है इस पे इतना नजर नहीं रहती है कि आप बस हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र करने का एक फायदा ये भी होता है, या ऐसा समझे हरे कृष्ण महामंत्र आप पे असर कितना कर रहा है उसको देखने का एक तरीका ये है कि कितने गुण विकसित हो रहे हैं, और अगर आप गुणों को विकसित करने के लिए कोशिश करते हो तो आपके हरे कृष्ण महामंत्र करना आसान हो जाए। तो ये हर गुण के लिए लागू होता है और ये इस पर नजर रहने की जरूरत है कि अगर मैं कोई नियम का पालन कर रहा हूं उसके पीछे एक मूल्य है, एक गुण है जिसका विकास करने की कोशिश है, क्योंकि अक्सर भक्तों में जब ये चीज नहीं इस पर नजर नहीं रहती है तो वो नियम आग्रह बन जाता है, यानी कि वो आप कर रहे हैं क्योंकि आपको बोला गया करने के लिए, उससे होता है क्या है वो मुझे बता दिया, तो आप यकीन जानिए उससे होता होएगा नहीं कुछ ज्यादा खास, क्योंकि आपकी नजर नहीं थी उस तरफ, उतना असर नहीं देगा जितना असर वो दे सकता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो महाबली महाराज का जो स्टैंड है लोगों ने लिया, देख सकते हैं भगवान ने उनका रिवॉर्ड भी उस तरीके, उसके बाद भी अब आगे और अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुई, टेस्ट और आगे होंगी। सो एक भगवत प्राप्ति आसान नहीं कह सकते। धन्यवाद। किसी के कोई कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं? जी मोहन सर।
धन्यवाद प्रभु जी, स्पेशली आपने कई सेंसिटिव इश्यूज लिए जो जनरली नहीं लिए जाते, और स्पेशली आपने जो एकेडमिक इंटीग्रिटी पर टच किया, दैट वाज वेरी बहुत ही शिक्षाप्रद था वो। मेरा प्रश्न है, जो आपने सबसे शुरुआत में एक इश्यू रेज किया था कि कई बार गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए बिना सोचे समझे फॉलो करने वाली बात भी रेज की जाती है, और एग्जैक्टली चैतन्य चरितामृत में वो प्रसंग भी आता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गोविंद आते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य का संवाद होता है, वहाँ पे परशुराम ने कैसे जमदाग्नि के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और सीमिंगली बहुत ही स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शन था, किसी भी प्रकार से अपनी इंटेलिजेंस समझ में नहीं लगता कि वो कोई परंपरा को भगवान को वर्शिप करने वाला इंस्ट्रक्शन है कि माँ को मार दिया जाए, भाइयों को मार दिया जाए, और फिर वही एग्जाम्पल बताए लक्ष्मण ने कैसे फॉलो किया, और दूसरी तरह ये भी है
परशुराम को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बिना बलि महाराज का केस बताए, एक वो है कि ये भी है, एंड देन द लेट द स्टूडेंट डिसाइड एंड गेट मैच्योर बाय टेक Seeing both instances, दोनों चीजों को देखे और उसको मद्देनजर रख के धीरे धीरे अपनी जजमेंट पैदा करें, जजमेंट और फैसला उसका अपना होगा, उस वक्त कोई नहीं होगा जी फलाने गुरु ने बोला था इसलिए, जो आपको जहां भी आप जाओगे वो अपने अपने फैसले की वजह से जाओगे, किसी का रिएक्शन इतना सा हो सकता है, पार्शियल रिएक्शन हो सकता है कि हाँ उन्होंने गलत सलाह दी है, मगर जिसको सलाह को माना है ना उसके बाद उसको जो है मन में लेके आया है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है। तो दरअसल अक्सर ये चीज इसी तरीके से होती है, ये एक चीज बता दिया और दूसरी चीज छोड़ दी, तो इसलिए ये तभी मैं बार बार कर रही हूँ, इसमें प्रीचर का ही हैज टू, इसमें वो प्रीचर जो है ना, इसमें किसी तरीके की हमदर्दी की उम्मीद नहीं कर सकता अगर उसकी प्रीचिंग की वजह से जो है दूसरा आदमी नालायक पैदा हो रहा है, ठीक है ना। एक मासूम था, एक जो जैसे मैंने बताया, एक जो आता है वो मासूम होता है, अब उसके बाद वो सयाना बनेगा कि नालायक बनेगा, उसका काफी दारुंदा टीचर के हाथ में, उसने बात क्या बताई है, उसने पूरी बात ही नहीं बताई, वो इसी तरीके से एक चीजें बता के छोड़ दे, जिन लक्ष्मण ने यूं किया था, परशुराम ने यूं किया था, और ये जो बलिराम महाराज नहीं कहते ये कौन बताएगा, और ये जो वैशव मुनि के साथ याज्ञवल्क्य नहीं कहते ये कौन बताएगा, बात ही होगी। इसीलिए टीचर का काम ये नहीं है कि वो ऑडियंस की तरफ से डिसाइड करके देते आपको क्या करना है, उसका काम ये है कि वो समान मुहैया करे ताकि वो डिसाइड कर ले कि काबिल बने, ये तो इसीलिए प्रीचर का। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कई बार बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पर ना उठा के दो चार इश्यूज को ठीक से कर लिया, कई बार होता है कि एक में बहुत छोटे पर सर भागवतम एक ऐसी चीज है कि अगर मैं यहाँ पर बैठ के इसी श्लोक पे एक बात बता रहा हूँ, ये बैठेंगे बिल्कुल दूसरी बात बोलेंगे, बिल्कुल तीसरी सी चौथी, किसकी बात सच है, सबकी बात सच है, और यही है, और इसी को आप एब्सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि हमें क्या है, क्योंकि लफ्जों के मायने भी ठीक से नहीं पता होते, एब्सोल्यूट का मतलब समझते एक, वो होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर एक होता है तो या वैरायटी कहाँ से आती है, वो इंक्लूडेड होती है, और ये सब चीजें, और ये मुश्किल हो सकती है पर यही रास्ता है, उसकी मुश्किल आसान बनाने के लिए कई बार जब हम ये फैसला करके लेते हैं कि उसकी मुश्किल आसान कैसे होगी, उसको आधी बात बताओ तब वो उस विचार को मरवाने वाली बात है, तो उसको पूरी बात बताई जाए, उसको ठीक है, उसको जितनी उसकी समझ होगी समझ आएगी, नहीं है धीरे धीरे समझ आएगी, कम से कम आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा कि आप उसको पूरी बात नहीं बता, तो ये टीचर का काम है कि वो बताए पूरी बात बताए, ऑफकोर्स जाहिर बात है इसीलिए प्रश्न उत्तर भी जरूरी है, उसके बाद पूछ भी ले कुछ समझ भी आ रहा है, तो ये चीजें हैं जरूरी। अक्सर ऐसे केसेस में मैं कई बार देखता हूँ, मैं बहुत वरिष्ठ लेक्चरर्स होते हैं यहाँ पर और वो बहुत महत्वपूर्ण जरूरी विषय पे बात हुई होती है और जैसे ही क्वेश्चन आंसर का वक्त आता है जो सबसे ज्यादा होशियार होता है सबसे पहले उठ जाते हैं। तो इसको ना उनकी बदकिस्मती पे मातम ही किया जा सकता है कि भाई तुम अगर कुछ ओरिजिनल पूछने के काबिल नहीं हो किसी और का सवाल ही सुन लो, क्योंकि सारा खुलासा उसके बाद होता है और वो जरूरी है, तब जाके आप एक बैलेंस ड्रॉ करा सकते हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू। मैंने आपके सवाल के जवाब ये दो चीजें छेड़ने की कोशिश करी।
हरे कृष्ण भाई, जैसे हम वैष्णव सॉन्ग में पढ़ते हैं कृष्ण से तोमार कि कृष्ण गुरु की प्रॉपर्टी है और गुरु कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, तो ठेकेदारी और ये प्रॉपर्टी में कैसे?
बहुत फर्क है। ये गुरु से तोमार जो है, कृष्ण से तोमार जो है, ये एक बहुत ही सटल और हायर टॉपिक है। मैं दे लेता हूँ, चलिए आपने आपने जिक्र किया जो मैं अपनी समझ बयान कर देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं वैष्णव फिलासफी में रस की दृष्टि से, एक को कहते हैं त्वरीय, एक कहते हैं मरीय। ठीक है, त्वरीय का मतलब है त्वरीय यानी कि आई एम कृष्णस, जो महाप्रभु ने जो प्रेयर किया है वो आई एम कृष्णस के बेसिस पे किया है। ठीक है, और मरीय यानी कि कृष्णा इज माइंड, दिस इज लाइक समबडी लाइक राधा रानी, कैन शी कैन सी इट्स लाइक राधा रानी, दिस इज कंसिडर्ड द ओरिजिनल डिवोटी। That's why बाकी लोगों और devotee of the devotee बोला इसलिए जाते हैं। तो इसलिए बाकी लोग ऐसे क्लेम नहीं करते हैं कि कृष्ण मेरी प्रॉपर्टी मेरे जेब में। ठीक है ना, फॉर द डिसाइपल स्टैंड पॉइंट, क्योंकि गुरु जो है इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी नित्यानंद प्रभु, उस लिहाज से उसको गुरु कृष्ण की प्रॉपर्टी देखा जाता है। गुरु की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कृष्ण, जिस अगर हम उसको न्यूट्रलिटी से एक पर्टिकुलर एंगल से जब उसको आप देख रहे हैं तो आप उसको ऐसे देख रहे हैं कि हाँ आप कृष्ण, क्यों? क्योंकि फ्रॉम द स्टैंडपॉइंट ऑफ डिसाइपल उसको तो कृष्णा गुरु के थ्रू ही मिलते हैं ना, तो मुझे क्या करना है कि बाकी किसकी प्रॉपर्टी है, मुझे वहां से मिलते हैं तो गुरु आपके इस हिसाब से, तो इस लिहाज से नॉट एज एन इंडिविजुअल बट इन हिज रोल एज ए गुरु ही कैन डिलीवर कृष्ण। एंड हाउ डज ही डिलीवर कृष्ण? बाय गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। गुरु भी तो कृष्ण को किसी जिप फाइल में डाल के मेल नहीं करते कि जी ये खोल लेना कृष्ण प्रकट हो जाएगा, इस तरह नहीं है, मामला है नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं इस तरह से। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये जो जज्बाती बातें होती है ना, इन्होंने बर्बाद की। कृष्ण जो तुम्हार वो लंबा लेटा हुआ डोरमेट की तरह बगैर ये समझे बूझे कि भैया कृष्ण तुम्हार का मतलब क्या होता है, कृष्ण तुम्हार का मतलब है कृष्ण के इंस्ट्रक्शन है, तो कृष्ण तुम्हार सबके ही है कृष्ण तुम्हार। अब मैं अगर ये बोलूँ अगर परमात्मा जो हर के ऋषि में वास करते हैं तो कृष्ण तो हर किसी के ही है, तो जूते क्यों खा रहे हो? करेक्ट इसको बात समझा नहीं, ये जज्बाती बात जो होती है ना, चीजों को जज्बाती तरीके से जब हम प्रेजेंट करते हैं गुरु से और रो रहा होगा सुन के क्यों गुरु जी गुरु महाराज, ये इसी तरीके के लोग होते हैं, गुरु सब जानते हैं, वो बेचारा काम का उस पर जो है इतना बोझ डाले जा रहे हैं। ठीक है ना, कॉमिशन बनाकर दो लोग चार दिन बाद ऐसे ही आदमी बोलेगा जी वो गुरु ये गुरु वो क्या होता है काकू लागे प्राय गोविंदियों मिलाए चीजें, तो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे बर्बादी के जो कई वजह है ना उनमें से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है चीजों को निकाल के ले आना और उसको इस तरीके से रखना जी गुरु तुम्हारे हैं कृष्ण तुम्हारे हैं यूं है, और बाकी को सारा पूरी भागवत गीता बताई हुई जिसके अंदर बताया है कृष्ण मैं कैसे बनता हूँ किसी को, वो कौन बताएगा? वो उस तरफ आओ, मैं समझता हूँ वो ज्यादा जरूरी है। इस तरह की चीजें ये गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, अरे अब इसमें आगे है ना इस आदमी की कुछ क्वालिफिकेशन भी बताई है, ये मांगा है गुरु से सकल सम्मान को रीते सकल की देहो ना तो क्वालिफाई करके क्या है जाता जाता कि सबको उसकी हैसियत के हिसाब से सम्मान करना, इसमें जजमेंट्स हैं, इसमें उसकी उसकी कृष्ण कॉन्शियस की रिफाइनमेंट कितनी हुई है, क्या डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है। तो इस तरीके से वो डिसाइपल का पॉइंट ऑफ व्यू है उस What is more important from the standpoint of the disciple? गुरु कृष्ण के हैं नहीं है disciple को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर disciple गुरु के instructions को follow नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है गुरु कृष्ण के? मैं मेरा तो ये सवाल है, अगर गुरु कृष्ण के है भी मेरे और आपके सेहत पे क्या फर्क पड़ता है उसके? तो आपके तो नहीं है ना, मेरे तो नहीं है ना, मैं तो उस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा कि वो को कृष्णा, मैं कृष्ण का बनूंगा कैसे, ये वो सिर्फ ये बताने के लिए कि गुरु को असाधारण मनुष्य नहीं समझ लो नाम का, और कृष्ण गुरु हो गया कृष्ण जो गुरु की प्रभु उस तरीके से आओ गुरु से जाके पूछ लो ना, आपका शौक है अपने शौक पूरा करो, जाओ जाओ किसी भी गुरु से पूछो, जाओ पूछ लो जाओ कि जी कोई कृष्ण आपके प्रॉपर्टी है मुझे जवाब दे, सुन लेना या तो वो गुरु झूठ बोल रहा है। अब क्या लगता है किसी भी गुरु से, चाहे वो दीक्षा शिक्षा गुरु है, उससे अगर आप सवाल पूछते हो कि जी कृष्णा अच्छा तुम्हार कृष्ण दीते पावेश लाइन है ये, आप कृष्णा आपके है ना, आपकी प्रॉपर्टी है क्या, पूछ रहे क्या लगता है क्या जवाब मिलेगा, क्या बोल रहे आप, तो मेरे सभी अभी अभी तो तुम्हें पता चला मैं हूँ कौन, अब बोलेगा भैया मैं एनक सर्वेंट हूँ उसका, ये है हर मंडी, तो उस तरह की चीज आपको सवाल
हरे कृष्ण भाई। तो जी आपने बताया कि गुरु अलग अलग परंपराओं से आते हैं, तो अलग
मैंने कब कहा, मैंने नहीं कहा
तो कुछ
नहीं हमारे कहा नहीं, पहले आप मैं कहा नहीं, हमें वैसे भी ट्रेनिंग मिली है कम्युनिकेशन पे, जहां पे भी गलत बात सुनो फौरन खारिज कर दो, आगे बात ज्यादा नहीं बनवाते क्योंकि वो कैलकुलेशन ही गलत है, दो दो मैं दो पांच उसके बाद पूरी मैथमेटिक्स बना दी आपने, है ही नहीं, दो बातों पांच मैंने कही नहीं, वो अलग चीज है, मैंने कंपेरिजन करा नहीं किसी, मैंने तो अभी तक गौड़ीय वैष्णव परंपरा का नाम नहीं लिया, आप पता नहीं कहाँ से निकाल, मैंने नहीं बोला, आपका सवाल पूछ लीजिए मैं बता देता हूँ, अब ये ना कहिए कि मैंने कहा
है। अभी आपने जैसे बताया कि गुरु का आदेश अगर गलत होता है,
जी
गुरु अगर कोई गलत आदेश दे दे,
गुरु अगर हाँ गुरु अगर गलत आदेश देते जी जी जी
गुरु अगर कोई गलत आदेश देते हैं
जी,
तो शिष्य का पतन नहीं होता,
हाँ बशर्ते वो उस आदेश का पालन न करे, मरवाने वाली बात है।
प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि गुरु हम धारण तभी करते हैं जब हम खुद अज्ञान में हैं और हमें दिशा की आवश्यकता है,
नहीं इतने भी अज्ञान में नहीं है आप तो फिर आप धारण करने के लायक ही नहीं है, ये भी समझ लें, ये दूसरी बकवास है जो बेची जाती है और लोग बड़े प्यार से खरीद कर खुश भी होते हैं इसको खरीद के, हम अज्ञान में होते हैं, अज्ञान में होते तो खरीद कैसे सकते हो, खरीद रहे हो कि लुट रहे हो ये कौन बताएगा, जो सामान खरीद रहे हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है, आपको विषय का ज्ञान नहीं है पर इंसान की पहचान तो है,
नहीं प्रभु जी आवश्यकता का हमें पता है कि हमें सामान चाहिए, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, वो बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है,
तो भाई खरीदार से आना होना चाहिए ना,
नॉलेज तो नहीं है, डीप नॉलेज तो हमें तब होती है जब उस चीज को टेस्ट करते हैं और जब उसका इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि ये सही है या गलत,
बिल्कुल इसीलिए टेस्टिंग का पीरियड दिया हुआ है, कम से कम एक साल तक टेस्ट करते रहे और अगर बात समझ में आए रोका तोड़ दे, समझ ले जान ले और समझ ले, ये हर जगह लागू होता है, जैसे आप रिश्तेदारियां करते हैं ना वहां पर भी बर्बादियां इसलिए होती है,
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते करते कई साल निकल जाते हैं, हमारी भी आवश्यकता होती है पूर्ण नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, हम समझते नहीं ठीक है हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, लेकिन फिर कभी जाकर के पता चलता नहीं ये जो प्रोडक्ट साइड में चल रहा था तो और भी अच्छा है
जी,
तो उसमें एक साल
तो चले जाए उसमें तो आपको कौन रोक रहा है, ये तो यही तो फायदा है हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का एडवांटेज ये है कि जैसे आप आपने शादी करी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, अगर आप आपकी शादी की गलती अगर आपको 20 साल बाद पता चलती है अब आप अपनी गलती नहीं सुधार सकते, मगर इसका एडवांटेज ये है कृष्ण भाषण का कि अगर आपको लगता है ये गलत हो गया आपके साथ धोखा हो गया तो आप शादी के बाद तो दूसरी नहीं रख सकते कानूनन या गैर कानूनन, ठीक हो गई बात, पर यह आप रुक सकते हैं उसको शिक्षा गुरु कहते हैं रख लें, अगर किसी और पे आपको बड़ा दिल आ रहा है तो चले जाए आप अपनी असल पूरी कर लें, पर फिर उसकी बात माननी पड़ेगी, फिर वो यूं नहीं है, कई बार ये जो एक चीज जो है ना अक्सर मैंने कई बार बड़ी बसें बड़े आसानी से बोल दी जाती है, ये एक ही शिक्षा गुरु हो सकता है, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, बात तुम्हारा पड़ोसी मानेगा उसकी, तुमसे तो एक भी समझा जा रहा, जिसके जितने बनाओगे तो मुझे बात मानने के लिए बनाई, ये नहीं है मनमानने के लिए बनाई है, बात मानने के लिए बनाई है, नहीं हो रही है कि इसकी शक्ल पसंद नहीं, अब इसकी ये बात नहीं सुननी, ये क्योंकि मेरे हिसाब से बात कर रहा हूं इसकी ये वाली बात सुननी नहीं, फिर अगर आप एक से ज्यादा रख रहे हैं फिर बात माननी पड़ेगी, जैसे होता है जैसे कई मजहबों में होता है अगर एक से ज्यादा बीवी रख रहे हो तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और बराबर का असर हो गया फिर, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के शास्त्र में बराबर है, ये कौन बताएगा? अगर आपको दूसरा बंदा पसंद है तो आपको पूरी आजादी उसके पास जाने की, पर फिर आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां पर आप अपना मत्था उसके सर पर टेकते हो। अगर आपको चूज करने की आजादी है, वो आजादी आपको इसीलिए दी गई है क्योंकि उसकी बात मानने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अक्सर ये चीज ठीक से नहीं होती है बात की, जी बड़े सारे शिक्षक अगर तुम्हारा सुपरमार्केट का वो प्रोडक्ट नहीं है कि जी आज ये साबुन इस्तेमाल कर लिया, कल फलाने डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लिया, आप सारे डिटर्जेंट, फिर आपको सारे डिटर्जेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं आप, कोई अर्ज नहीं है। यही तो यही बड़प्पन स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ में, वो इतने उतना बड़ा जिगर नहीं होता, इतना बड़ा दिल नहीं होता। स्पिरिचुअल मास्टर चाहे जिस भी कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा दीक्षा शिक्षा में, मैं एनीवे डिवोटी किसी भी अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, डिवोटी किसी भी कैपेसिटी में ऑपरेट करें चाहे वो शिक्षा दीक्षा गुरु हो, उसका दिल इतना बड़ा होता है या होना चाहिए, यानी जल के मर जाए वो उससे क्यों बात कर रहा है। ये होती है लीचरों वाले काम, लीडर में होता है चार चार जुमा जुमा चार दिन की पैदावार जो होती है, लीचर को लीडर बन जाता है, उससे किसी ने सवाल किसी और सवाल पूछ लिया उसके भाई सांप लौटने लगता है अंदर से, इससे क्यों सवाल पूछ लिया, तुम इतने इनसिक्योर हो तो तुम किसका क्या नहीं। तो अगर ऐसे इनसिक्योर व्यक्ति से आपका पाला पड़ा है तो मैं तो फिर आपकी किस्मत में मातम ही कर सकता हूँ।
आपने और एक चीज बताई थी हट धर्मी और उसूल
जी,
उसूलों का मूल्य क्या होता है जो आपने
बताया? उसूल के पीछे मूल्य होता है, जैसे कि मैं लोगों को धोखा नहीं देता, ठीक है ना, इसके पीछे क्या मूल्य है? सत्य। मैं अपनी बात से नहीं फिरता, इसके पीछे उसूल क्या है? इंटीग्रिटी। और दूसरा क्या हो सकता है इसमें? हदर हट धर्मी मैंने बोल दिया ना, मेरा रेपुटेशन है, मेरी मन की गर्दन, मैं अपनी गर्दन उतरवा लूंगा, बात नहीं बाहर से नहीं फिरूंगा। इस तरह की चीज होती ना हमारे, हाँ अक्सर सुनते हैं ना घरों में, वैसे अपना खानदान का नहीं पता होता, तो पूछो तुम्हारे गोत्र का है, बाप से पूछ के बताता हूँ। फिर उन्हें हमारे खानदान में यूं होता है, तुम क्या पिड्डी या पिड्डी का शोरबा, तुम्हारा क्या खानदान ना खानदान खानदान, ये होती हट धर्मी। नहीं, मूल्य मूल्य शास्त्र में मिलते हैं, वैल्यूज, वो किसी की जागीर नहीं होती, मूल्य मूल्य होते हैं। अगर कोई भी इंसान इंडिविजुअली या कलेक्टिवली ऐसे सोसाइटी प्रोग्रेस करता है या बर्बाद होता है उसके पीछे मूल्य होते हैं।
ठीक है, चिंतन का विषय है,
ऑफ कोर्स चिंतन का विषय।
जैसे आपने बताया था कि जो मैं समझ पाया कि एक प्रचारक का कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना, एक क्या कंप्लीट पिक्चर देना दोनों एक्सट्रीम्स के। मैं सोच रहा था फिर अगर जैसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार के लिए आपने जितना रियलाइज किया उतना जाके आप शेयर करो, या सरस्वती का भी एग्जाम्पल देते हैं, तो इस बात को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ऐसा शायद मैच्योरिटी तो काफ़ी समय बाद या प्रैक्टिस के बाद।
हाँ, तो इसका कोई तरीका नहीं है, मैंने ये सवाल लक्ष्मी मनुमान जी से पूछा था, उन्होंने भी यही बोला था कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, करते करते ही सीखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सुबह होगी और बस आत्मा सर के पीछे हेलो आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। वैसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होता नहीं है, प्रैक्टिस से ही आता है और आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो यही प्रचारक की ह्यूमिलिटी भी है, फिर जब उस पर बात समझ आ जाए ना कि मैंने प्रचार ठीक से नहीं किया, तो बात मान ले, बता भी दे। हमारे प्रॉब्लम क्या होती है जहाँ पर जो प्रचार को साल साल पता हो जाता है उसने क्या झक मारी थी, उसके बावजूद भी वही कुछ कर रहा है, तो इसे हट धर्मी कहते हैं। तो अगर उसको कोई बात समझ आ गई कि जी मैं जब नादान था, बच्चा था, नहीं पता था, बोल दी जज्बात में आकर जो मेरे को जितनी समझ थी मेरे हिसाब से, और ये प्रचारक का जो रिलेशन है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला, वो दिन कभी नहीं आएगा जो आज पूरा हो गया। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो है ये इवॉल्व होता चला जाएगा, इसी को यही इसी को सोल को जो है ये नित्य नवायमान बना के रखता है, तो ये तो हमेशा रहता है, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो और जब प्रभुपाद की बात कर रहे हैं कि वन स्पीक अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन, मैं तो कहूँगा ही कंपेल्ड टू, उसके पास वो चारा क्या है? नहीं ना करके दिखाएगा और क्या अल्टरनेटिव है उसके पास, अल्टरनेटिव है नहीं, जितना पता उतना ही बताएगा, मजबूरी है उसकी लास्ट उसकी तो। मगर यही है कि जब आप वो प्रेजेंट करते हो एटलीस्ट उसके अंदर उसकी सिंसियरिटी अगर है तो कृष्ण ऑनर्स दैट एंड ही डज दैट चेंज ऑफ हार्ट। अगर 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 मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ, एक घंटा मुझे बोलने के लिए बोला गया है और उसके अंदर मैंने 10 मिनट की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो फिर मैं अपनी इंटीग्रिटी देखू, इंटीग्रिटी के पे बोलने से पहले। और आप चाहते जी वो छत्ती भी नहीं मारे, तो ये है। तो प्रचारक ये तो कर सकता है ना कि अपने तरफ से जितनी मेहनत कर सकता है उसको भगवान को यही प्रचार की ऑफरिंग, और ऑफरिंग क्या उसकी, व्हाट सर्विस इज ही डूइंग टू कृष्णा इफ ही इज नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग। सो टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी वो प्रिपेयर कर, भगवान से प्रार्थना करे कि ये जो है ये चीज ठीक हो और ये लोगों के मन में जो सकारात्मक परिवर्तन लेते हो आओ, यही कर सकते हो, क्या कर सकते हो। यहाँ माता जी ने सवाल पूछा था, आखिरी सवाल कुछ
पढ़े कई बार शिष्य भी इतना इमैच्योर होता है कि वो शिक्षा गुरु उसको बहुत ही चीपली ले
लेगा,
चीपली भी नहीं लेना बेजान गुरु साधु शास्त्र, उसको शास्त्रों में इतना होना चाहिए। और एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि उसके मन की बात नहीं हुई कि चलो तो चेंज करो
स्विच,
तो मैच्योरिटी की आवश्यकता है। नॉर्मली अगर हम शिक्षा गुरु चेंज कर रहे हैं तो जैसे बताया कि दीक्षा गुरु से परमिशन लेना चाहिए
जी, अगर उस वक्त है तो।
अगर कहीं पे भी आपका एक एंकर नहीं है
जी,
तो फिर ना कोई दीक्षा का फायदा ना कोई शिक्षा का फायदा।
वैसे भी जो मैं जितना मैंने पढ़ा है शिक्षा गुरु चेंज नहीं होता, शिक्षा गुरु ऐड होता
है, ऐड होता है, लेकिन कई बार ये गुरु चेंज भी करना चाहे या कोई
वो इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग दैट देन नो, बट इफ ही इज चेंजिंग देन ही हैज टू प्रूव दैट द शिक्षा गुरु इज डिस्क्वालीफाइड,
डिस्क्वालीफाइड
इज नॉट दैट ही कैन चेंज बाय हिज विल। आपको पसंद नहीं है तो यू कैन टर्मिनेट दैट रिलेशनशिप बाय नॉट एक्टिंग ऑन इट, नॉट दैट यू कैन टेक अ डिवोर्स,
इट्स एज गुड एज डिवोर्स,
बट या आई एम बट एक्चुअली नॉट टेकिंग अ डिवोर्स।
लेकिन उनको कोई कोई भी शिक्षा गुरु अपने जीवन में नया ऐड कर रहे हैं तो वो उनको दीक्षा गुरु से परमिशन लेना
जी,
बिल्कुल उसके कुछ सैंक्टिटी है, अदरवाइज तो वो शॉपिंग में चलता रहेगा।
हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये जो जिन्होंने पॉइंट उठाया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजली होता ही है कि दीक्षा गुरु, क्योंकि वो तो अनाउंस्ड मैरिज है, शादी सबको पता है ना किससे शादी हुई है, अब वहाँ तो वो नहीं कर सकता कुछ। शिक्षा गुरु जो है जो लगा हुआ है उसके साथ दिन रात सुबह शाम सुबह सा उसे जबरदस्ती लात मार दो, एक दिन आपको बात पसंद नहीं आई मुंह पे बोल दो जी नहीं हम नहीं मानते उनको, ये आप इस तरह से रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऊपर से साइन होता है। इसको गुरु त्याग कहते हैं, ये समझ लें इसको अच्छे से, इसको यूँ ना समझे गुरु त्याग सिर्फ दीक्षा गुरु का त्याग नहीं होता, पढ़ लें जिसको भी जिसका जी चाहिए ये पटपट है सामने। तो ये इस तरह नहीं कि आपको आपकी आपके शिक्षा गुरु पसंद नहीं आ रहा छोड़ दिया आपने, आप छोड़ नहीं सकते। हाँ आपके मन मुटाव हो सकते हैं, आपके ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिन्हें आप उसकी बात नहीं मान पा रहे हैं, बट आप छोड़ नहीं सकते। नहीं ऐसे स्ट्रगल के केस में जो है आप दूसरा शिक्षा गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं, दीक्षा गुरु से बात करके कर लीजिए कि अगर ऐसे 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 इशू है ऐसे, मगर आप छोड़ आप त्याग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फॉर्मली डिवोर्स, there is no process of divorcing from the diksha guru or shiksha guru unless and until you have to prove that he is disqualified for this, tab aap kar sakte. This is the classic example, aap dekh sakte hain shaman pandit ka jo case aata hai usme yahi cheez aayi hai, aap chhod nahi sakte. Thank you maaji ka sawal nahi nahi aapka sawal nahi tha, aap bol rahe the inhone hath uthaya tha ji. इस समय हो चुका है प्रसादम, सब लोग जाना चाहिए जा सकते हैं, अलग से पूछ लीजिए आपकी मर्जी। धन्यवाद। ग्रंथ राशि में भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।